नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पांडव लोग ऋषि मुनियों के कहने से तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। जिन जिन तीर्थों में जो जो संत वे, महात्माओं वे, ऋषि वे, उन सब का चरित्र सुनते सुनते वे महर्षिगणों के साथ एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ऋषियों ने कहा कि ये वो स्थान है कि मानधाता ने यहां पर यज्ञ किया। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि मानधाता तीनों लोकों में बड़े विख्यात थे, उनका जन्म कैसे हुआ और यहां कैसा यज्ञ किया वो बताओ। लोमस ऋषि कहने लगे, सुनो युधिष्ठिर, मानधाता के पिता युवनाश्व थे। युवनाश्व इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे। युवनाश्व ने 1000 अश्वमेध यज्ञ करके और भी बहुत से यज्ञ किए, सब यज्ञों में बड़ी भारी दक्षिणाएं दी, मंत्रियों पर राज्य का भार छोड़कर स्वयं अपने मन का निग्रह करते हुए वन में रहते थे और खूब वहां पर यज्ञ वगैरह करते थे। एक बार महर्षि भृगु के पुत्र ने उससे पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। योनाशु के पुत्र नहीं था तो भृगु के पुत्र ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। रात्रि के समय में उपवास से गला सूख जाने के कारण राजा को बड़ी प्यास लगी। युवनाश्व को उसने आश्रम के भीतर जाकर जल मांगा, परंतु सब लोग रात्रि में थके होने कारण से बड़े गाढ़ निद्रा में पड़े थे, किसी ने आवाज सुनी नहीं। किसी ब्राह्मण ने आवाज नहीं सुनी तो महर्षि ने वहां एक मंत्रपूत जल का बड़ा सा कलश रख रखा था, उसको देखकर राजा ने जल्दी जल्दी में उस जल को पी लिया, प्यास बुझाई और उसको वहीं छोड़ दिया। जब सब लोग जगे और भृगुपुत्र सहित सब ऋषि मुनियों ने, ब्राह्मणों ने, सभी ने घड़े को जल से खाली देखा तो पूछा कि भाई ये जल खाली कैसे हो गया। तो युवनाश ने कहा, महाराज रात को मुझे बहुत भूख लगी, बहुत प्यास लगी थी तो मैंने पी लिया। भृगुपुत्र ने कहा, अरे राजन बड़ी भारी भूल हो गई, कितना श्रेष्ठ तुम्हारे पुत्र होगा, कैसी मैंने कामना की थी और कैसे कैसे मैंने भाव रखकर मंत्र का अनुष्ठान किया था, जल को अभिमंत्रित किया था, हमसे बिना पूछे तुमने उस जल को पी लिया। खैर अब हो गया सो तो हो गया, होनार को कोई पलट तो सकता नहीं है, अवश्य अब ऐसी बात होगी तो दुनिया में बड़ी विचित्र हलचल हो जाएगी, तुम्हारे पेट से एक बेटा पैदा होगा। ऋषि मुनि अपने स्थान पर चले गए। 100 वर्ष बीतने के बाद राजा की बाई कोख फाड़कर एक सूर्य के समान तेजस्वी बालक निकला। उस बालक का कुछ ऐसा ही प्रभाव हुआ कि पुरुष के पेट को फाड़कर उत्पन्न हुए बालक से राजा की मृत्यु नहीं हुई। उस बालक को देखने के लिए देवराज इंद्र उस स्थान पर आए। देवताओं ने इंद्र से पूछा, किम दास्यति, अब ये बालक किसको धारण करेगा, किसकी गोद में दूध पिएगा, इसको कौन पालेगा? तो इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली उस बच्चे के मुंह में दे दी और इंद्र ने उत्तर दिया, मां धाता, ये मेरी अंगुली पिएगा। फिर देवताओं ने उसका नाम मां धाता ही कर दिया। फिर उसके ध्यान करते ही धनुर्वेद, संपूर्ण वेद, दिव्य अस्त्र अपने आप उसके सामने उपस्थित हो गए। साथ ही एक आजगव नाम का धनुष, सींग के बने हुए बाण और अभेद कवच भी सामने आए और उसके पश्चात स्वयं इंद्र ने उसका राज सिंहासन पर अभिषेक कर दिया। वो राजा मानधाता सूर्य के समान तेजस्वी, एक बार उसने यहां यज्ञ किया तो इस परम पवित्र कुरुक्षेत्र प्रदेश में उसी का ये यज्ञ करने का स्थान है। इस क्षेत्र में पहले प्रजापति ने 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला इष्टीकृत नाम याग किया था। यहीं पर नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश ने यमुना जी के तट पर यज्ञ के सदस्यों को 10 पद्म गौवें दान की थी। 10 पद्म कहां रखी होंगी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 खरब खरब 10 खरब नील 10 नील पद्म और 10 पद्म गौवें दी और अनेक यज्ञ और तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की। यह देश नहुष के पुत्र पुण्यकर्मा राजा ययाति का है। ययाति ने अनेक यज्ञ किए थे। इसी जगह भरत राजा ने भी अश्वमेध यज्ञ करके घोड़ा छोड़ा। राजा मरुत्त ने भी मुनिवर संवर्त की अध्यक्षता में यहां यज्ञ किया था। जो पुरुष इस तीर्थ में आचमन करता है उसे संपूर्ण लोकों का दर्शन होने लगता है और वे समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। लोमस ऋषि के कहने पर सबने वहां स्नान किया और फिर आगे स्वस्ति वाचन करके लोमस ऋषि से कहने लगे, हे मुनिवर, इस तपस्या के प्रभाव से मुझे तो सब लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं यहां से श्वेत घोड़े पर चढ़े हुए अर्जुन को देख रहा हूं। लोमस ऋषि ने कहा, बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। महर्षिगण इस प्रकार स्वर्ग का दर्शन किया करते हैं। ये परम पवित्र सरस्वती नदी है, इसमें स्नान करने से सारे पापों से मुक्त हो जाता है। 5-5 कोस के विस्तार वाली प्रजापति ब्रह्मा की ये वेदी है, 5 कोस तक फैली हुई। यही महात्मा कुरु का क्षेत्र है जो आगे जाकर कुरुक्षेत्र के नाम से विख्यात है। देखो, ये विनशन नाम का तीर्थ है। यहां सरस्वती नदी अदृश्य हो जाती है। यह स्थान निषाद देश का द्वार है। यहां इस विचार से कि निषाद लोग मुझे देख न ले, सरस्वती भूमि में समा गई। इसके आगे चमसोद भेद नाम का स्थान है, वहां फिर सरस्वती प्रकट होती है। ये देखो, ये सिंधु नदी है, बहुत अच्छी जगह है। इसी जगह अगस्त से समागम होने पर लोपा मुद्रा ने उन्हें पति रूप में वर्ण किया था। यह विष्णुपद नाम का पवित्र तीर्थ दिखाई दे रहा है। यह विपाशा नाम की परम पवित्र नदी है। और ये देखो, ये काश्मीर मंडल आ गया। तुम भाइयों सहित यहां रहने वाले अनेकों महर्षियों के दर्शन करो। ये देखो, ये मानसरोवर का द्वार है। यह तीर्थ तो बड़ा ही आश्चर्य से भरा हुआ है। एक युग पूरा होता है तब पार्वती जी और पार्षदों सहित इच्छा रूप धारण करने वाले महादेव जी यहां पधारा करते हैं। जितेंद्री और श्रद्धावान याचक लोग अपने परिवार के हित की कामना से इस मानसरोवर में चैत्र मास में स्नान करके महादेव जी का पूजन किया करते हैं। यह सामने उज्जानक नाम का तीर्थ है। इसमें कुशेशय नाम के कमल पैदा होते हैं। ये यहां इधर दिखाई देने वाला भृगुतुंग नाम का पर्वत है। इस पर्वत से पहले सारे पापों को नाश करने वाली वितस्ता नाम की नदी है। इसी के तट पर राजा उसी नर ने इंद्र से भी बढ़कर यह अनुष्ठान किया था। सुनो युधिष्ठिर, एक बार इंद्र और अग्नि राजा उसी नर की परीक्षा के लिए आए। बहुत सुंदर कथा है। इंद्र ने बाज का और अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया। उस समय उसीनर महाराज यज्ञशाला में यज्ञ कर रहे थे, तो वो बाज और कबूतर दोनों वहां पहुंच गए। जब बाज के भय से डरकर कबूतर अपनी रक्षा के लिए राजा की गोद में छिप गया, तब बाज ने कहा, राजन, समस्त राजागण केवल आपको ही धर्मात्मा मानते हैं, सो आप ये संपूर्ण धर्मों से विरुद्ध काम कैसे करते हैं? राजा ने पूछा कि मेरा कौन सा काम धर्म विरुद्ध है? बाज ने कहा कि मैं भूख से मर रहा हूं और ये कबूतर मेरा आहार है, और तुम धर्म के लिए यहां यज्ञ कर रहे हो। उस धर्म का लोप हो जाएगा यदि मैं भूख से मर गया, तो तुम्हारे द्वारा धर्म की रक्षा नहीं होगी, तुम्हारे द्वारा अधर्म हो जाएगा। तुम देखते हो कि इस कबूतर को बचाने से मुझे धर्म मिलेगा, ये कभी धर्म नहीं होगा, क्योंकि मैं भूख से मर जाऊंगा। राजा ने कहा, हे महापक्षिन, यह पक्षी तुमसे डरकर भयभीत हुआ अपने प्राण बचाने के लिए मेरी शरण में आया है। इसने अभय पाने के लिए मेरा आश्रय लिया है। यदि मैं इसे तुम्हारे चंगुल में न पड़ने दूं, तो इसे तुम धर्म क्यों नहीं मानते हो? ये धर्म ही तो है। शरणागत की रक्षा करना क्या धर्म नहीं है? ये देखो बेचारा कैसे घबराहट के मारे कांप रहा है और मेरे शरीर में दुबुक दुबुक करके अंदर आना चाहता है। मैंने इसके प्राणों की रक्षा के लिए इसको शरण दी है। ऐसी स्थिति में इसको त्यागना बड़ा भारी अधर्म होगा। जो पुरुष ब्राह्मण की हत्या करता है, जो पुरुष जगन माता गौ का वध करता है, और जो व्यक्ति शरणागत को त्यागता है, इन तीनों को समान पाप लगता है। बाज बोला, महाराज, सब प्राणी आहार से पैदा होते हैं। यदि आपको भी अन्न नहीं मिलता, आपके पिता को भी अन्न नहीं मिलता, तो आप कहां से पैदा होते? आहार से आपका जीवन चलता है। यदि आपको आहार नहीं मिलता, तो आप इतनी बड़ी आयु कैसे प्राप्त करते? आहार से ही सब जीवित रहते हैं। जिस धन को त्यागना बड़ा कठिन माना जाता है, उसके बिना भी मनुष्य बहुत दिन तक जीवित रह सकता है, लेकिन आहार का त्याग करके तो कोई ज्यादा समय जीवित नहीं रह सकता। इसलिए संसार में सबसे बड़ी चीज आहार है। आज आपने मुझे भोजन से वंचित कर दिया, इसलिए मैं जी नहीं सकूंगा। इधर यदि आप कबूतर की रक्षा करेंगे, तो इधर मैं छटपटा के मर जाऊंगा। बात तो एक ही हुई, मैं मर जाऊंगा, मेरे स्त्री बच्चे नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार इस कबूतर को बचाकर आप कौन से धर्म का पालन कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, बल्कि इसको बचाने से आप अनेक प्राणियों के हत्यारे बन जाओगे। जो धर्म दूसरे धर्म का बाधक होता है वो धर्म थोड़ा ही है, वो तो कुधर्म है। धर्म तो वही है जिससे किसी दूसरे के धर्म का विरोध न हो। जहां दो धर्मों में विरोध होता हो वहां छोटे बड़े का विचार कर जिसका किसी से विरोध न हो उसी धर्म का आचरण किया जाए, वही धर्म होता है। तो आप भी धर्म और अधर्म इन दोनों के निर्णय में गौरव और लाघव पर दृष्टि रखकर जिसमें विशेष पुण्य हो उसी धर्म का अनुष्ठान करें। राजा ने कहा, पक्षी प्रवर, आप बहुत अच्छी बात कहते हैं, क्या आप साक्षात पक्षीराज गरुड़ हैं? इसमें संदेह नहीं है, आप धर्म के मर्म को अच्छी तरह समझते हैं, तभी तो आप इतनी बातें करते हैं। आपकी बातें बड़ी विचित्र और धर्म सम्मत है। मैं ये भी देखता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको मालूम न हो, परंतु आप ये कैसे भूल गए कि शरणार्थी के परित्याग को धर्म नहीं कहते? हे पक्षी प्रवर, आपका ये सारा प्रयत्न आहार के लिए जान पड़ता है, तो आपको आहार तो और जगह भी तो मिल सकता है, और इससे भी बड़ा आहार मैं आपको दे सकता हूं। लीजिए, आप मेरा सारा प्रदेश ले लीजिए, सारा राज्य ले लीजिए, ये शिवी प्रदेश आज से आपका है, सारी वस्तु आपकी है, किंतु मैं शरण में आए हुए पक्षी को नहीं त्याग सकता। हे विहग श्रेष्ठ, जिस काम के करने से आप इसे छोड़ सकते हो मुझे वो बताइए, मैं वही करूंगा, किंतु इस कबूतर को नहीं छोड़ूंगा। बाज बोला, वाह महाराज, आपने भी धर्म की बात तो अच्छी कही, पर मुझे राज्य देने की बात कहते हो। भला मैं बाज ये मनुष्य का राज्य ले सकता हूं? मैं राज सिंहासन पर बैठ करके राज्य का काम कर सकता हूं? क्या बात करते हैं आप, एक तरफ शरणागत की रक्षा करते हैं और दूसरी तरफ मुझे आहार के लिए राज्य देते हैं। क्या राज्य खाने की वस्तु है? कोई खाने की वस्तु हो तो कोई बात करे। यदि आपका इस कबूतर पर स्नेह है तो इसके बराबर अपना मांस काटकर तराजू में रख दीजिए, जब वह तोल में इस कबूतर के बराबर हो जाए तब वो मांस मेरे सामने रख दीजिए, वो मेरा आहार होगा, मेरी तृप्ति हो जाएगी। कर लो आप अपने शरण में आए हुए कबूतर की रक्षा। लोमस ऋषि कहते हैं, युधिष्ठिर, वो दृश्य बड़ा ही गंभीर और संवेदनशील था। सब लोग सोचने लगे, इतना बड़ा राजा अब क्या अपने शरीर को काटेगा? परंतु राजा शिवि ने बिना किसी संकोच के, भय के, घबराहट के अपने सेवकों को आदेश दिया, कहा लाओ तलवार लाओ। मंत्रियों ने कहा, महाराज ऐसे चलते फिरते पशुओं को आप अपना काटकर मांस दे देंगे, जैसे ये बोलता है कि मेरा सारा परिवार नष्ट हो जाएगा, आपकी सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। वो विचार करो, इन पक्षियों को जाने दो, आप अपना शरीर काटोगे? शिवि ने कहा कि देखो, इसने मेरा शरीर मांगा है, यदि और का भी शरीर मांगता तो क्या मुझे और का शरीर काटने का अधिकार था? नहीं था। मैं नहीं, दूसरे पशु को भी नहीं मार सकता। बड़ा अच्छा किया इसने, कम से कम मेरे शरीर के लिए कहा, मैं तो अपना मांस काटकर इसको दूंगा। एक पलड़े में कबूतर को बैठा दिया, दूसरे पलड़े में अपना मांस काट काट कर उसमें रखा। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मांस और रखेंगे पलड़े बराबर हो जाएंगे। जो ही वो उधर मांस रखते हैं तो कबूतर का पलड़ा वापस धीरे हो जाता है, फिर मांस काटते हैं देखा थोड़े से मांस है, फिर पलड़ा भारी हो जाता है, फिर पलड़ा भारी हो जाता है, फिर पलड़ा भारी हो जाता है। तो वो राजा शिवी बड़ा व्यथित हो गया। आज मैं एक बाज के सामने कबूतर के बराबर मांस देने में असफल हो रहा हूं। घबरा गया, उसके आंखों से आंसू आने लगे। इतने में वो बाज बोला, हे धर्मज्ञ, हे महाराज शिवी, कोई घबराने की बात नहीं है, मैं कोई ऐसा चलता फिरता बाज नहीं हूं, मैं देवताओं का स्वामी इंद्र हूं, ये कबूतर अग्निदेव हैं, हम दोनों आपकी धर्मनिष्ठा की परीक्षा के लिए आपकी यज्ञशाला में आए थे। जब तक संसार में लोगों का आपका स्मरण रहेगा तब तक ही संसार में आपका सुयश फैलेगा, आप बड़े दिव्य लोकों में जाएंगे। हे महाराज, आप कोई किसी प्रकार कष्ट न उठाना। ऐसा कहकर वे देवलोक में चले गए और उनका शरीर पूर्ववत स्वस्थ हो गया। ये वो स्थान है, इस स्थान का आप दर्शन कीजिए। ऋषि ने कहा, राजन, उद्दालक के पुत्र श्वेत केतु इस पृथ्वी पर मंत्र शास्त्र में बड़े पारंगत हुए थे, उनका ये आश्रम है। उपनिषदों में इनकी बड़ी चर्चाएं होती हैं, आप इस स्थान का दर्शन कीजिए। इस आश्रम में महर्षि श्वेत केतु को मानवी के रूप में साक्षात सरस्वती देवी के दर्शन हुए थे। उद्दालक मुनि का कहोड़ नाम से प्रसिद्ध एक शिष्य था, उसने अपने गुरुदेव की बड़ी सेवा की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत जल्दी सब वेद पढ़ा दिए और अपनी कन्या सुजाता भी उसे विवाह दी। कुछ काल बीतने पर सुजाता गर्भवती हुई, वह गर्भ अग्नि के समान तेजस्वी था। एक दिन कहोड़ वेद पाठ कर रहे थे तो उस समय वो गर्भ बोला, पिताजी, आप रात भर वेद पाठ करते हैं परंतु आपका उच्चारण ठीक नहीं हो रहा है। गर्भ ने जब ये बात कही, शिष्यों के बीच में कही, तो कहोड़ को बड़ा क्रोध आया कि अब ये उदरस्थ है, पेट में है, तभी ये मेरी गलतियां निकालता है, जब ये जन्म ले लेगा तो क्या करेगा। क्रोध आया और शाप देते हुए कहा, तू पेट से ही ऐसी टेढ़ी टेढ़ी बातें करता है, जा, तू आठ जगह से टेढ़ा पैदा होगा। तब अष्टावक्र नाम से उसका जन्म हुआ और उसने एकांत में अपने धनहीन पति से धन लाने के लिए प्रार्थना की। अभी जन्म नहीं हुआ, अष्टावक्र पेट में बढ़ने लगे तो सुजाता को बड़ी पीड़ा हुई, तो उसने एकांत में अपने धनहीन पति से धन लाने के लिए प्रार्थना की। तब सुजाता का पति कहोड़ धन लेने के लिए राजा जनक के पास गए, किंतु वहां वाद करने में कुशल बंदी उन्हें शास्त्रार्थ में हरा दिया और शास्त्रार्थ के नियम के अनुसार उन्हें जल में डुबो दिया। शर्त यह थी कि जो जीतेगा वो जीत जाएगा और हारेगा वो जल में डूब जाएगा। अष्टावक्र के पिता कहोड़ हार गए, पानी में डुबो दिया। जब उद्दालक को समाचार मिला कि मेरा पुत्र कहोड़ इस प्रकार से जल में डूबा हुआ है। तो उन्होंने अपने पुत्रवधु सुजाता के पास जाकर उसे बात सुना दी और कहा कि तू अष्टावक्र से इसके विषय में कुछ मत बोलना, समय आने पर अष्टावक्र को कोई पता नहीं चला, वे उद्दालक को ही अपना पिता समझते थे अष्टावक्र जी, और उनके पुत्र श्वेत केतु को अपना भाई मानते थे। एक दिन अष्टावक्र जिनकी अब आयु 12 वर्ष की थी उद्दालक की गोद में बैठे, वहीं उसी समय श्वेत केतु आए और उन्हें पिता की गोद में से खींचकर कहा, ये तेरे बाप की गोद नहीं है, आकर टप से बैठ गया, तेरे बाप की गोद को ढूंढ। श्वेत केतु की इस कटुक्ति से उसके चित्त पर बड़ी चोट लगी और उसने घर आकर अपनी माता से पूछा कि मेरे पिता कहाँ हैं। सुजाता को बड़ी घबराहट हुई और उसने शाप के भय से सब बात बता दी। ये सब रहस्य सुनकर उन्होंने रात्रि के समय श्वेत केतु से मिलकर ये सलाह की, हम दोनों राजा जनक के यज्ञ में चले, वह यज्ञ बड़ा विचित्र है, वहां हम ब्राह्मणों के बड़े बड़े शास्त्रार्थ सुनेंगे। ऐसे ही सलाह करके वे दोनों मामा भांजे राजा जनक के समृद्ध संपन्न यज्ञ के लिए चले गए। यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचकर जब वे भीतर जाने लगे तो द्वारपाल ने कहा, आप लोगों को प्रणाम है, हम तो आज्ञा का पालन करने वाले हैं, राजा के आदेशानुसार हमारा जो निवेदन है उस पर ध्यान दो। इस यज्ञशाला में बालकों को जाने की आज्ञा नहीं है, केवल वृद्ध और विद्वान ब्राह्मण ही प्रवेश कर सकते हैं। तब अष्टावक्र ने उत्तर दिया, द्वारपाल, मनुष्य अधिक वर्षों की उम्र से, बाल पक जाने से, धन से अथवा कुटुंब से बड़ा नहीं माना जाता, ब्राह्मणों में तो वही बड़ा है जो वेदों का वक्ता हो, ऐसा नियम ऋषियों का बनाया हुआ है। मैं इस राजसभा में जितने बंदी हैं उनसे मिलना चाहता हूं, तुम मेरी ओर से ये सूचना महाराज को दे दो, आज तुम हमें विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते देखोगे और बात बढ़ जाने पर बंदी को परास्त हुआ पाओगे। द्वारपाल बोला, अच्छा मैं किसी उपाय से आपको सभा में ले जाने का प्रयत्न करता हूं, किंतु वहां जाकर आपको विद्वानों के योग्य काम करके दिखाना होगा। ऐसा कहकर द्वारपाल राजा के पास ले गए। अष्टावक्र ने कहा, राजन आप जनक वंश में प्रधान स्थान रखते हैं और चक्रवर्ती राजा हैं, मैंने सुना है आपके यहां बंदी नाम का कोई विद्वान है, वह ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में परास्त कर देता है, फिर आप ही के आदमियों से उन्हें जल में डलवा देता है, क्या ये बात सत्य है? ये बात ब्राह्मणों के मुख से सुनकर मैं अद्वैत ब्रह्म विषय पर शास्त्रार्थ करने को आया हूं, कहां है वो आपका बंदी नाम का ब्राह्मण, मैं उससे मिलना चाहता हूं। राजा ने कहा, बंदी का प्रभाव बड़े बड़े वेद वेत्ता ब्राह्मण देख चुके हैं, तुम उसकी शक्ति को नहीं पहचानते, जीतने की आशा कर रहे हो, बचपन की सी बातें मत करो, पहले कितने ब्राह्मण आ गए किंतु सूर्य के आगे जैसे तारे फीके पड़ते हैं उसी प्रकार वे सभी के सभी हतप्रभ हो गए। अष्टावक्र ने कहा, महाराज मेरे जैसों से पाला नहीं पड़ा है, इसी से वह सिंह के समान निर्भय होकर बातें करता है, किंतु अब मुझसे परास्त होकर वह उसी प्रकार मूक हो जाएगा जैसे रास्ते में टूटा हुआ रथ जहां का तहां पड़ा रहता है। राजा ने गौर से अष्टावक्र को देखा, परीक्षा करने के विचार से कहा, जो पुरुष 30 अवयव 12 अंश 24 पर्व और 360 अरों वाले पदार्थों को जानता है वो विद्वान है। यह सुनकर अष्टावक्र बोले, जिसमें पक्ष रूप 24 पर्व हैं, ऋतु रूप 6 नाभि है, मास रूप 12 अंश हैं और दिन रूप 360 अर्रे हैं, वह निरंतर घूमने वाला संवत्सर रूप काल चक्र आपकी रक्षा करे। बिल्कुल यथार्थ उत्तर सुनकर राजा अंदर से बड़े प्रभावित हुए और राजा ने फिर प्रश्न किया, सोने के समय कौन नेत्र नहीं मूंदता, जन्म लेने के बाद किसमें गति नहीं होती, हृदय किसमें नहीं होता और वेग से कौन बढ़ता है। अष्टावक्र ने कहा, मछली सोने के समय नेत्र नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होने पर चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं होता और नदी वेग से बढ़ती है। राजा जनक अष्टावक्र को प्रणाम की, गदगद हो गए। कहा, महाराज आप देवताओं के समान प्रभाव वाले हैं, मैं आपको मनुष्य नहीं समझता, मैं आपको बालक भी नहीं समझता हूं, मैं आपको वृद्ध मानता हूं, वाद विवाद करने में आपके समान कोई नहीं है, इसलिए अब आपको मंडप का द्वार सौंपता हूं और यही वह बंदी है। तब अष्टावक्र ने बंदी की ओर घूमकर कहा, बंदी माने एक बंदी नाम का ब्राह्मण था, बंदी की ओर देखकर घूमकर कहा, अपने को अतिवादी मानने वाले बंदी, तुमने हारने वालों को जल में डुबाने का नियम ले रखा है, विचार करो, क्या विद्या किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है? सा विद्या या विमुक्तये, विद्या की शोभा तो इसी में ही है जो किसी के कल्याण में काम आए। तुमने न जाने कितनों को डुबोया, किंतु मेरे सामने तुम बोल नहीं सकोगे। जैसे प्रलयकालीन अग्नि के निकट नदी का प्रवाह सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे सामने तुम्हारी वाद शक्ति नष्ट हो जाएगी। अब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और मैं तुम्हारी बातों का उत्तर देता हूं। हे युधिष्ठिर महाराज, जब भरी सभा में अष्टावक्र ने क्रोध के साथ गरज कर इस प्रकार ललकार लगाई तो बंदी ने कहा, अष्टावक्र, एक ही अग्नि अनेक प्रकार से प्रकाशित होता है, एक सूर्य सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है, शत्रुओं का नाश करने वाला देवराज इंद्र एक ही वीर है और पितरों का ईश्वर यमराज भी एक ही है। अष्टावक्र कहते हैं, इंद्र और अग्नि दो देवता हैं, नारद और पर्वत ये देवर्षि भी दो हैं, अश्विनी कुमार दो हैं, रथ के पहिए भी दो हैं और विधाता ने पत्नी और पत्नी दो को सहचर भी बनाया है, ये दोनों जीवन के संगी हैं, तुम एक की बात क्यों करते हो, दो की क्यों नहीं करते। फिर बंदी ब्राह्मण बोला, ये संपूर्ण प्रजा कर्मवश तीन प्रकार से जन्म धारण करती है। सब कर्मों का प्रतिपादन भी तीन वेद करते हैं। अध्वर्यु जन भी प्रातः मध्यान्ह और सायं तीनों समय यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। कर्मानुसार प्राप्त होने वाले भोगों के लिए स्वर्ग मृत्यु और नरक ये तीन लोक हैं तथा वेद में भी कर्मजन्य जातियां भी तीन प्रकार की बताई जाती हैं। अष्टावक्र बोलते हैं, नाय ब्राह्मणों के लिए आश्रम चार है, वर्ण भी चार ही यज्ञों के द्वारा अपना अपना निर्वाह करते हैं, मुख्य दिशाएं चार है, ओंकार के अकार उकार मकार और अर्धमात्रा ये चार वर्ण हैं, तथा परा पश्यंती मध्यमा और वेखरी चार वाणी है। देखो वो एक को सिद्ध करते हैं, ये दो को सिद्ध करते हैं, वो तीन को सिद्ध करते हैं, ये चार को सिद्ध करते हैं। फिर बंदी कहता है यज्ञ की अग्नियां पांच हैं, पंक्ति छंद भी पांच पदों वाला होता है, यज्ञ भी पांच प्रकार का होता है, इंद्रियां भी पांच हैं, वेद में पंच शिखा वाली अप्सराएं भी पांच हैं, तथा संसार में पवित्र नद भी पांच हैं। अष्टावक्र कितने ही इस प्रकार कहते हैं कि अग्नि का साधन करते करते दक्षिणा में गऊएं छह ही देनी चाहिए, काल कर्म काल चक्र में ऋतुएं भी छह होती हैं, मन सहित इंद्रियां भी छह होती हैं, कृत्तिकाएं भी छह होती हैं और समस्त वेदों में साधस्क यज्ञ भी छह कहे जाते हैं। बंदी थोड़े से सावधान हुए, फिर कहने लगे ग्राम्य पशु सात, वन्य पशु भी सात, यज्ञों को पूर्ण करने वाले छंद भी सात, ऋषि भी सात, मान देने पर भी सात और वीणा के तार भी सात होते हैं। अष्टावक्र मुस्कुराकर कहने लगे सैकड़ों वस्तुओं का तोल करने के वाले शाण माने तोल का गुण आठ होते हैं, सिंह का नाश करने वाले शरभ के चरण भी आठ होते हैं, देवताओं में वसु आठ होते हैं और सब यज्ञों में यज्ञ स्तंभ के कोण भी आठ माने गए हैं। बंदी बोलते हैं पितृयज्ञ में संहिता छोड़ने के मंत्र नौ होते हैं, सृष्टि में प्रकृति के विभाग को भी नौ कहा गया है, वृहति गायति गायत्री आदि छंद भी नौ हैं और जिनसे अनेक प्रकार की संख्या होती है ऐसे एक से लेकर अंक भी नौ हैं। अष्टावक्र जी ने कहा संसार में दिशाएं दस हैं, सहस्र की संख्या भी सौ को दस बार गिनने से ही होती है, गर्भवती स्त्री भी गर्भ को दस महीने धारण करती है, तत्व का उपदेश करने वाले भी दस हैं और पूजने योग्य भी दस हैं। फिर बंदी ने कहा पशुओं के शरीर में ग्यारह विकारों वाली इंद्रियां ग्यारह होती हैं, यज्ञ के स्तंभ ग्यारह होते हैं, प्राणियों के विकार भी ग्यारह होते हैं, देवताओं में रुद्र भी ग्यारह होते हैं। अष्टावक्र ने कहा एक वर्ष में महीने बारह होते हैं, जगती छंद के चरण में बारह ही अक्षर होते हैं, प्राकृत यज्ञ बारह दिन का होता है और धीर पुरुषों ने सूर्य को भी बारह रूप से कहा है। बंदी ने कहा तिथियों में त्रयोदशी को उत्तम माना है और पृथ्वी भी तेरह द्वीपों वाली बतलाई गई है। इस प्रकार बंदी के आधा श्लोक ही कहकर चुप हो जाने पर अष्टावक्र जी आधे श्लोक को पूरा करते हुए कहने लगे बोलो, आधा ही क्यों बोले और बोलो, नहीं बोल सके तो पूरा करते हुए स्वयं अष्टावक्र जी कहे अग्नि वायु और सूर्य ये तीनों देवता तेरह दिनों के यज्ञों में व्यापक हैं और वेदों में भी तेरह आदि अक्षरों वाले अति छंद कहे जाते हैं। इतना सुनते ही बंदी का मुख नीचा हो गया, विचार में पड़ गया, परंतु अष्टावक्र की वाणी की झड़ी लगी हुई थी। ये देखकर सभा के ब्राह्मण हर्षद ध्वनि करते हुए अष्टावक्र के पास आए और सम्मान करने लगे। स्वयं राजा भी आए। अष्टावक्र ने कहा, राजन, यह बंदी शास्त्रार्थ में अनेकों विद्वान ब्राह्मणों को परास्त कर जल में डुबवा चुका है, अब इसकी भी तुरंत वही गति होनी चाहिए। बंदी ने कहा, महाराज, मैं कोई मामूली ब्राह्मण नहीं हूं, मैं जलाधीश वरुण का पुत्र हूं। मेरे पिता के यहां भी आपकी तरह 12 वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ हो रहा है, उसी के लिए मैंने जल में डुबोने के बहाने चुने हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वरुण लोक भेज दिया है, वे सब अभी लौट आएंगे। अष्टावक्र जी, आप मेरे लिए पूजनीय हैं, इनकी कृपा से जल में डूबकर मैं भी अपने पिता वरुण देव से शीघ्र मिलने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। राजा को बंदी की बातों में फंसे देर करते देखकर अष्टावक्र कहने लगे, राजन, मैं कई बार कह चुका, फिर भी तुम मतवाले हाथी की तरह कुछ भी नहीं सुन रहे हो। इससे मालूम होता है लसोड़ों के पत्तों पर भोजन करने से तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई, अथवा तुम इस चापलूसी की बातों में आ गए। कौन वरुण का पुत्र, कैसा वरुण का पुत्र, कहां उसने वरुण लोक को भेज दिया, ऐसी बातों में आ गए। जनक जी ने कहा, हे अष्टावक्र जी, मैं आपकी वाणी सुन रहा हूं, साक्षात दिव्य पुरुष है, आपने शास्त्रार्थ में बंदी को परास्त कर दिया, मैं आपकी इच्छा अनुसार अभी अभी इनको दंड देने की व्यवस्था करता हूं। बंदी ने फिर कहा, राजन, फिर आपको कहता हूं, वरुण का पुत्र होने से मुझे डूबने में कोई भी भय नहीं है। ये अष्टावक्र भी अभी बहुत दिनों से डूबे हुए अपने पिता कहुड़ का दर्शन कर लेंगे। ऐसी इन दोनों में बात हो रही थी, तभी समुद्र में डुबाए हुए सभी ब्राह्मण वरुण देव से सम्मानित होकर जल से बाहर निकल आए और राजा जनक की सभा में आ गए। उनमें से कहुड़ ने कहा, मनुष्य ऐसे ही कामों के लिए पुत्र की कामना किया करते हैं, मैं आज से संसार में सब लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि पुत्र वही है जो पिता को कष्ट से उबार दे। जिस काम को मैं नहीं कर सका और भयंकर कष्ट में चला गया, उस काम को मेरे पुत्र ने कर दिखाया, तभी मेरा पिता होना सार्थक है और इसका पुत्र होना सार्थक है। राजन, कभी कभी दुर्बल मनुष्य के बलवान और मूर्ख के भी विद्वान पुत्र हो जाते हैं। इसके पश्चात बंदी भी राजा की आज्ञा लेकर समुद्र में कूद पड़ा। इधर ब्राह्मणों ने अष्टावक्र की खूब पूजा की। अष्टावक्र ने सबके सामने अपने पिता का पूजन किया, पिता को प्रणाम किया, फिर अपने मामा श्वेत केतु के सहित वे अपने आश्रम में पहुंच गए। वहां पहुंचकर कहोड़ ने अष्टावक्र से कहा, बेटा, तुम इस समंगा नदी में प्रवेश करो। बस जब अष्टावक्र ने जैसे ही उसमें डुबकी लगाई, उनके अंग एकदम स्वस्थ और सीधे हो गए। उनके संसर्ग से वह नदी भी पवित्र हो गई। इस प्रकार इस नदी में जो स्नान करता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे युधिष्ठिर महाराज, तुम भी द्रौपदी और भाइयों सहित यहां स्नान करो, आचमन करो और इसमें प्रवेश करो। फिर लोमस ऋषि ने कहा, राजन, ये मधुविला नदी दिखाई देती है, यही समंगा है, ये कर्दमिल क्षेत्र है, यह राजा भरत का अभिषेक किया था। वृत्रासुर का वध करने पर शचीपति इंद्र जब राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गए थे, तब वे इस समंगा नदी में स्नान करके ही पापों से छुटकारा पा चुके थे। यह मैनाक पर्वत, इसके पास विनशन तीर्थ, इधर ये कनखल नाम की पर्वतमाला, ये ऋषियों को बहुत पवित्र लगती है। इसके पास ये महानदी गंगा बहती है। पूर्व काल में यहां भगवान सनत कुमार ने सिद्धि प्राप्त की थी। इसमें स्नान करके तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। ये भृगुतुंग नाम का पर्वत है। ये स्थूल शिरा मुनि का सुंदर आश्रम है। वहां अपने मन से मान और क्रोध का निकाल देना और रैव्य ऋषि का दर्शन करना। यहां जाने से तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। तुम उशीर बीज, मैनाक, श्वेत, काल आदि पर्वतों को देखो। यहां अग्नि हरदम प्रज्वलित रहती है। यहां बैठकर कोई धैर्यपूर्वक समाधि लगाता है, सब तीर्थों के दर्शन हो जाते हैं। अब हम मंदराचल पर्वत की ओर चलेंगे। वहां मणिभद्र नाम का यक्ष और यक्षराज कुबेर रहते हैं। इस पर्वत पर 88,000 गंधर्व और किन्नर, उनसे चौगने यक्ष अनेकों प्रकार के शस्त्र धारण करके यक्षराज मणिभद्र की सेवा में उपस्थित रहते हैं। तरह तरह के रूप धारण कर लेते हैं। इनका बल वायु के समान है। उन बलवान यक्ष और राक्षसों से सुरक्षित होने के कारण ये पर्वत बड़े दुर्गम है। यहां तुम बहुत सावधानी से रहना। हमें यहां कुबेर के साथी जो मैत्र नाम के भयानक राक्षस हैं, उनसे सामना करना पड़ सकता है। राजन, ये कैलाश पर्वत 6 योजन ऊंचा है। उस पर्वत पर देवता आया करते हैं और उसी पर बद्रिकाश्रम नाम का तीर्थ है। अतः तुम मेरी तपस्या और भीमसेन के बल से सुरक्षित होकर इस तीर्थ में स्नान करो। स्नान करो उस समय, हे देवी गंगे, देवी गंगे। इस प्रकार से तुम गंगा का उच्चारण करो। आप इन नरेंद्र युधिष्ठिर की रक्षा करें। लोमस ऋषि कहने लगे, हे गंगे, मैं कांचनमय पर्वत से उतरती हुई आपको कलकल ध्वनि से सुन रहा हूं। राजा युधिष्ठिर की रक्षा करें। गंगा जी से प्रार्थना की, सावधान होकर आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, महर्षि लोमस जी इस देश को अत्यंत भयंकर मानते हैं, इसलिए तुम लोग द्रौपदी को संभाल कर रखो, इसमें प्रमाद न हो। यहां मन, वाणी और शरीर से भी बहुत पवित्र रहना। भीमसेन मुनिवर ने कैलाश के विषय में जो बात कही है, तुमने भी तो सुनी है ना? जरा विचार कर लो, इस पर द्रौपदी कैसे बढ़ेगी? नहीं तो एक काम करो सहदेव, भगवान धौम्य रसोइयों, पुरवासियों, रथ घोड़ों, नौकर चाकरों और रास्ते का कष्ट न सहने वाले ब्राह्मणों को लेकर तुम लौट जाओ। मैं, नकुल और भगवान लोमस जी तीन ही अल्पाहार का नियम करते हुए इस पर्वत पर चढ़ेंगे। मेरे लौटकर आने तक तुम सावधानी से हरिद्वार में रहो और जब तक मैं न आऊं द्रौपदी की भली भांति देखरेख करते रहो। भीमसेन ने कहा, महाराज, इस पर्वत पर राक्षसों की भरमार है। यों भी बड़ा दुर्गम है और बीहड़ है। सौभाग्यवती द्रौपदी भी आपके बिना लौटना नहीं चाहेगी। इसी तरह सहदेव भी सदा आपके पीछे ही रहना चाहता है। मैं इसके मन की बात खूब अच्छी तरह से जानता हूं। यह भी कभी नहीं लौटेगा। इसके सिवा सभी लोग अर्जुन को देखने के लिए बड़े उत्सुक हैं, इसलिए हम सब आपके साथ ही चलेंगे। चाहे जो कष्ट आए, यदि अनेकों गुहाओं के कारण इस पर्वत पर रथों से यात्रा करना संभव न हो तो हम पैदल चलेंगे। आप इसकी चिंता न करें। जहाँ जहाँ द्रौपदी पैदल नहीं चल सकेगी वहाँ इसको हम अपने कंधे पर ले लेंगे। ये माद्री कुमार नकुल और सहदेव भी सुकुमार हैं, यदि इनमें भी चलने की शक्ति नहीं होगी तो इनको भी चढ़ा लूंगा और मेरे ऊपर कोई किसी प्रकार भार की बात है नहीं, मैं भी चलता रहूंगा। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, तुम यशस्विनी पांचाली और नकुल सहदेव को भी ले चलने का साहस दिखा रहे हो, बड़ी प्रसन्नता की बात है। किसी दूसरे से ऐसी आशा नहीं की जा सकती भैया, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा बल धर्म और सुयश की वृद्धि हो। फिर द्रौपदी ने हंसकर कहा, महाराज मैं आपके साथ चलूंगी, आप मेरे लिए चिंता न करें। द्रौपदी के इन वचनों में बड़ी गंभीरता थी। लोमस जी बोले, कुंती नंदन इस गंधमादन पर्वत पर तपस्या के प्रभाव से ही चढ़ा जा सकता है, इसलिए हम सभी को तपस्या करनी चाहिए। तप के द्वारा ही हम तुम नकुल सहदेव भीमसेन अर्जुन को भी देख लेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, इस प्रकार ये बातचीत करते करते आगे बढ़े तो उन्हें राजा सुबाहु का विस्तृत देश दिखाई दिया। हाथी घोड़ों की बहुतायत, सैकड़ों किरात, तंगण पुलिंद जाति के लोग रहते थे। जब पुलिंद देश के राजा को पता चला कि उसके देश में पांडव लोग आए हैं तो उसने बड़े प्रेम से उनका स्वागत सत्कार किया। ऐसे धर्म पुरुष हमारे राज्य में आए, ओहो हमारे तो सौभाग्य के दिन चालू हो गए। उससे पूजित होकर वे बड़े आनंद से यहां रहे। दूसरे दिन सूर्योदय होने पर उन्होंने बर्फीली पहाड़ियों की ओर प्रस्थान किया। इन्होंने इंद्रसेन आदि देव सेवकों रसोइयों को द्रौपदी के सारे सामान को पुलिंद राजा के यहां छोड़ दिया और फिर पैदल आगे चलने लगे। चलते चलते फिर युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, भीम मैं अर्जुन को देखने की इच्छा से ही 5 वर्ष से तुम सबको साथ लिए सुरम्य तीर्थ वन सरोवर में विचर रहा हूं, परंतु अभी तक सत्य संध शूरवीर धनंजय को न देख सकने से मेरे हृदय में बड़ा संताप हो रहा है। अर्जुन के गुणों की क्या बात कहें, यदि छोटे से छोटा आदमी भी उसका तिरस्कार करता है तो वह मुस्कुरा करके उसे क्षमा कर देता है। सीधी सादी चाल से चलने वाले पुरुषों को वह अपनी तरफ से खूब सुख शांति का वितीर्ण करता है, सुख शांति को प्रदान करता है और उन्हें अभय कर देता है। यदि कोई छल कपट से उसके साथ घात करता है तो वह स्वयं इंद्रिय क्यों न हो उसके हाथ से बच नहीं सकता है, परंतु अपनी शरण में आए हुए शत्रु पर भी उसका बड़ा आदर भाव रहता है। हम सबका तो ये सहारा ही है। वह शत्रुओं को कुचलने वाला, सब प्रकार के रत्नों को जीतने वाला, सभी को सुखी करने वाला है। उसके बाहुबल के प्रताप से मुझे त्रिलोकी में विख्यात दिव्य सभा मिली थी। उसी का पराक्रम महाबली संकर्षण वीरवर वासुदेव और तुमसे टक्कर लेता है। उसी को देखने के लिए हम लोग गंधमादन पर्वत पर चढ़ रहे हैं। इस देश में कोई सवारी पर बैठकर नहीं चल सकता, न क्रूर लोभी अशांत चित्त यहां यात्रा कर सकते हैं। जो लोग असंयमी होते हैं उनको यहां मक्खी मच्छर डांस सिंह व्याघ्र सर्प आदि सताते हैं और संयमी पुरुषों के सामने ही नहीं आते हैं। अतः हमें संयत चित्त और अल्पाहारी होकर इस पर्वत पर चढ़ना चाहिए। लोमस ऋषि बोले, हे सौम्य, यह शीतल और पवित्र जल वाली अलकनंदा नदी बह रही है, यह बद्रिकाश्रम से निकलती है, बड़े बड़े देवता लोग इसमें स्नान करते हैं, आकाशचारी बालखिल्य और गंधर्वगण इसके तट पर आते हैं, यहां मरीची पुलह भृगु अंगिरा आदि मुनिगण शुद्ध स्वर से सामगान करते हैं। गंगा द्वार में भगवान शंकर ने इसी नदी का जल अपनी जटाओं में धारण किया था। तुम इस भागीरथी नदी को प्रणाम करो। अलकनंदा को प्रणाम किया और आगे के लिए रवाना हुए। लोमस ऋषि ने कहा, ये सामने कैलाश पर्वत के शिखर के समान सफेद पहाड़ सा दिखाई देता है, जानते हो ये क्या है? क्या महाराज, ये तो सफेद बर्फीला पहाड़ है। नहीं, ये नरकासुर की हड्डियां हैं। पूर्व काल में देवराज इंद्र का हित करने के लिए इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने उस दैत्य का वध किया था। उस दैत्य ने 10,000 बरस तक कठोर तपस्या करके इंद्रासन लेना चाहा और अपने तपोबल और बाहुबल के कारण वे देवताओं के लिए अजेय हो गया और उन्हें सदा ही तंग करता रहता था। इससे इंद्र की बड़ी घबराहट हुई और मन ही मन भगवान विष्णु का चिंतन करने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा। भगवान ने दर्शन दिए, तब देवताओं ने ऋषियों ने स्तुति करते हुए अपना कष्ट सुनाया। भगवान ने कहा, देवराज तुम्हें नरकासुर से भय है ये मैं जानता हूं, और ये बात भी मुझसे छिपी नहीं है कि वह अपने तपस्या के प्रभाव से तुम्हारा स्थान छीनना चाहता है। निश्चिंत रहो, वह तपस्या से भले ही सिद्ध हो गया हो तो अभी मैं उसे शीघ्र मार डालूंगा। देवराज से ऐसा कहकर उन्होंने एक ही तमाचे से उस नरकासुर के भगवान ने प्राण ले लिए और वो चोट खाए हुए पर्वत के समान गिर पड़ा। इस प्रकार भगवान के द्वारा मारे हुए उस दैत्य की हड्डियों का ढेर वो गिर पड़ा पड़ा रहा, वो हड्डियों का पहाड़ बन गया। इसके सिवा भगवान विष्णु का एक और कर्म भी प्रसिद्ध है। सतयुग में आदिदेव श्री नारायण यम का कार्य करते थे। उस समय मृत्यु न होने के कारण सभी प्राणी बहुत बढ़ गए, उससे पृथ्वी भारी मरने लगी। जल के भीतर 100 योजन अंदर चली गई। पृथ्वी ने कहा, महाराज यमराज जी तो है नहीं, काम कोई हो नहीं रहा है, प्राणी बढ़ रहे हैं, मैं आपकी शरण में हूं। और देखो मैं समुद्र में 100 योजन अंदर चली गई, मेरा उद्धार करो। आपकी कृपा से मैं बहुत समय तक स्थिर रही, अब बोझा बहुत बढ़ गया, मैं ठहर नहीं सकूंगी, मेरे इस भार को अब आप ही दूर करो, मैं शरणागता हूं, आप मुझ पर कृपा करो। पृथ्वी के ये वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे पृथ्वी तू भार से पीड़ित है ये ठीक है, परंतु भय की कोई बात नहीं है। मैं अब ऐसा उपाय करूंगा जिससे तू हल्की हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवान ने पृथ्वी को विदा कर दिया और स्वयं एक सींग वाले वराह का रूप धारण किया और फिर भूमि को उसी सींग पर रखकर 100 योजन नीचे से पानी के बाहर ले आए। इस अद्भुत दृश्य को देख सुनकर पांडव लोग बड़े प्रसन्न हुए और लोमस जी के बताए हुए मार्ग से जल्दी जल्दी चलने लगे। आज की कथा को यही पूरा करते हैं। कल हनुमान जी कारवर का प्रसंग आएगा, वो बीच में नहीं रह जाए इसलिए अभी यही पूरा। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण।